الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمين يا رب العالمين. آج هم نئی سورہ شروع کریں گے، سورہ دخان. سورہ دخان، اس کا نام اس کی آیت نمبر 10 میں بھی دخان مبین آیا، اس سے اس کا نام ہے، اور دخان دھوئیں کو کہتے ہیں. الدخان کا لفظ قرآن کریم میں سورہ حامیم سجدہ میں بھی آیا، وہاں پہ بھی اس کی بات ہم کر چکے ہیں. یہ مکی سورت ہے اور حوامیم کے سلسلے کی سورت ہے. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ 7 حوامیم ہیں، یعنی 7 سورتیں ہیں جن کی ابتدا حامیم سے ہوتی ہے، جن میں ہم سورہ مومن، سورہ حامیم سجدہ، سورہ شورا، زخرف یہ پڑھ چکے ہیں. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورہ دخان پڑھیں گے اور اس کے بعد الجاثیہ اور احقاف رہ جائیں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 الحوامیم مکہ میں نازل ہوئیں، تو یہ تمام صورتیں مکی صورتیں ہیں. در المنصور میں یہ ہے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زبور کے بدلے میں مجھے یہ حوامیم عطا کی گئیں، طوسین سے لے کے حوامیم تک. تو یہ یعنی بڑی فضیلت والی صورتیں ہیں. اس صورت کی فضیلت کے بارے میں آپ بعض جگہ پر کچھ احادیث بھی پڑھیں گے جن کو میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، مگر یہ سمجھ لیجئے گا کہ یہ تمام کی تمام احادیث بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ سمجھ جائیں کہ یہ تمام کی تمام شدید ضعیف ہیں، شدید ضعیف. جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صبح اٹھ کے حامیم الدخان کی تلاوت کی اس کے لیے 70,000 فرشتے استغفار کرتے ہیں. ترمذی کی روایت ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بے حد ضعیف ہے. اسی طرح جس نے جمعے کی رات کو یہ تلاوت کی اس کی مغفرت کر دی جائے گی، یہ بھی بہت ضعیف حدیث ہے. اور اسی طرح مغرب کی نماز میں بھی حامیم پڑھنے کی بات آئی ہے اور بخشش کی بات اس کے ساتھ آئی ہے، لیکن یہ تمام کی تمام ضعیف روایات ہیں. تو آپ جب ایسی کوئی روایت پڑھیں تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں شدید ضعف ہے. اس سورت کی ابتدا سورہ زخرف کی ابتدا سے مشابہ ہے. آپ اس میں جیسے پڑھ چکے ہیں، دونوں میں قرآن مجید کی عظمت کی بات آئی، اس کی شان کی بات آئی، اور یہ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بات نہیں ہے. اور اس صورت میں خاص طور پہ ایک ڈفرینٹ بات یہ ہے کہ قرآن کریم لیلۃ القدر میں نازل ہوا، یہ اس رات کی کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے تقدیر کے فیصلے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں، یہ اس میں آیا. اور قرآن مجید کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ غفلت میں اور لہو و لعب میں زندگی گزار رہے ہیں ان کو جگایا جائے کہ تاکہ وہ روز حساب کی تیاری کر لیں، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے لیے، سچائی کے لیے یہ شرط عائد کرتے ہیں کہ ان کو عذاب دکھا دیا جائے، تو ان کو یہ بتایا گیا کہ عذاب دیکھنے کے بعد جو ایمان لائے گا، پھر وہ ایمان بالغیب تھوڑی ہے، پھر تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس ایمان لانے کا. اور کفار مکہ کی عبرت کے لیے فرعون اور اس کی قوم کی مثال دی گئی، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا تھا لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آئے، تو ان کا انجام کیا ہوا. یہ ہم خاص طور پہ آج کے لیسن میں ये सब पढ़ेंगे। इसके बाद फिर कुरैश के कुफर और उनकी हठधर्मी का सबब जो था कि आखरत पे यकीन नहीं रखते थे, तो आखरत का फिर तफसील से बयान किया गया। ये मुख्तसर सूरतें हैं, खासतौर पर सूरह दुखान छोटी सी सूरत है, छोटी छोटी आयतें हैं इसके अंदर, कोई 3 अल्फाज की, 4 अल्फाज की आयत एक है, और मुख्तसर यानी मक्की सूरतों का जैसे असलूब होता है उसी तरह आप इसको देखेंगे। और इस सूरत के आखिर में कुरान मजीद का जिक्र फरमाया गया कि अल्लाह ताला ने इस कुरान को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान में नाजिल किया, ताकि जो इसके पहले मुखातिब थे मक्का के लोग वो इसे नसीहत हासिल कर सकें। तो ये कुछ मुख्तसर तारुफ है इस सूरह का। और जैसे कि तमाम हवामीम में आप एक चीज कॉमन देखते हैं कि हामीम से शुरू होती है, और साथ साथ आप ये भी बात नोट करिए कि तमाम हवामीम में मूसा अलैहि सलाम का जिक्र जरूर आया, तो ये भी याद रखने की बात है। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हामीम, हामीम हरूफ मुकत्तआत जिनका माना कोई भी नहीं जानता अल्लाह के सिवा। ये फिर क्यों कुरआने करीम में आए? क्या ये बेमानी हरूफ हैं? जी नहीं, ये बेमानी हरूफ नहीं, क्योंकि कुरआने करीम में कोई चीज भी बेमानी नहीं है। हाँ, ये हम जरूर कह सकते हैं कि हमें इनका माना मालूम नहीं है, बताया नहीं गया, और इनको इसलिए लाया गया, एक रीजन इनमें से ये है कि ये एक चैलेंज है कुरैश मक्का को कि वो ऐसा कलाम ले आए जो ऐसे हरूफ से ही बना हुआ है। और अगर वो अपने आप को समझते हैं कि वो बहुत बड़े अहलु जुबान है और ये कलाम अल्लाह का नहीं है, तो फिर ऐसा कलाम तो उनको भी लेकर आ जाना चाहिए, तो वो ले आए ऐसा कलाम। दूसरा एक रीजन ये भी दिया गया कि मुतवज्जे करने के लिए, जब हामीम कहा जाए दूसरा एकदम मुतवज्जे होता है कि क्या बात कही जा रही। और इतनी हद तक बात तो हम कह सकते हैं, लेकिन बाद किताबों में बहुत बहुत लंबी लंबी तफसीरें लिखी होंगी कि हा का माना ये, मीम का माना ये, लेकिन इनमें से किसी में भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं, कोई प्रूफ नहीं है कि ये सिर्फ राय हो सकती है किसी की, मगर कहीं पे भी ऑथेंटिकली हमें नहीं पता चलता कि इन हरूफ का, जो जितना भी कुरान करीम में हरूफ मुकत्ता आए हैं, ब्रोकन लेटर्स इस तरह जिनको अलग अलग करके हम पढ़ते हैं, कता करना ब्रेक करना ना, तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे, हा और मीम पढ़ते हैं, तो इनके माने हम नहीं जानते, हमारी अकल इससे आजिज है। तो अगर तुम अपने आप को बहुत बड़ी चीज समझते हो तो फिर इनका माना बताओ कि ये इनका माना क्या है। और कुरान इन्हीं हरूफ से बना है, तुम ये हरूफ जानते हो तो फिर इनसे ऐसा कराम तुम भी बना के ले आओ। ये एक तरह से प्रूफ है जिसके आगे वो लोग आजिज आ गए थे, ये प्रूफ है इस बात का कि ये अल्लाह ताला का ही कलाम है। वल किताब अल मुबीन, कसम है किताब मुबीन की, रोशन किताब की। किताब का मतलब यहाँ पे क्या है? कुरान। आप देखेंगे ज्यादातर जहां पर भी हरूफ मुकत्तआत आए हैं तो उनके साथ ही कुरान करीम की जरूर बात आई है। और इसमें अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि इसकी क्या हिकमतें हैं, मगर जैसे कि पहले बात आई कि कुरान चैलेंज कर रहा है और उसके बाद कुरान करीम की कसम खाई गई है। कसम भी उस चीज की अजमत पे दलील करती है कि ये कुरान कितनी अजीम किताब है, रोशन किताब है, क्लियर है, इसके अंदर जो भी चीजें हैं वो वाजे हैं। कोई इसके बाद ये नहीं कह सकता कि हमें तो समझ ही नहीं आती, हमें तो पता ही नहीं है, बिल्कुल वाजे हैं इसमें हर चीज, अहकामात बिल्कुल वाजे हैं, और कंफ्यूजन की इसके अंदर कोई बात नहीं है ऐसी। लिहाजा अब इसके बाद भी कोई इंसान कहे कि मैं तो समझ ही नहीं पाई और मुझे तो पता ही नहीं चला, तो ये झूठ होगा, क्योंकि ये कुरान मुबीन है, क्लियर है। हाँ, ये अलग बात है कि हम इसकी तरफ आना ही ना चाहें और इसको वैसी तवज्जो ना दें, वो अलग बात है, लेकिन इससे हमें कुरान करीम की अजमत का पता चलता है। बल्कि कुरान करीम में सूरह यूनुस में अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि ये वो चीज है जिसके ऊपर तुम्हें चाहिए कि तुम खुशियां मनाना, क्योंकि ये उन तमाम चीजों से बेहतर है जिनको लोग जमा करते हैं। हर चीज जिसको लोग जमा कर रहे हैं ये उससे ज्यादा बेहतर है। इसीलिए इसको हमें सबसे ज्यादा अपना वक्त, अपनी एनर्जी, अपनी जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा इसको देना चाहिए। ये अल्लाह ताला का कलाम है और दुनिया में कोई कलाम ऐसा नहीं जिसको हम ये कह सकें कि इस वक्त वो ऐसे प्रिजर्व्ड है, अल्लाह की तरफ से आए वो कलाम, लेकिन वो ऐसे प्रिजर्व नहीं है जैसे कि ये कुरान है। तो ये एक वाहिद कलाम इस दुनिया में रह गया जो एज इट इज अल्लाह की तरफ से जैसे उतरा था, अल्लाह ताला ने इसकी हिफाजत किया और उसी तरह हम तक पहुंचा है। तो इसकी अजमत हमारे नजदीक ऐसे ही होनी चाहिए जैसे अल्लाह ताला की अजमत, क्योंकि उसका कलाम है, ये उसकी बात है, उसके अल्फाज हैं और ये हमारा ईमान है। लिहाजा इसके साथ वक्त को कभी फालतू ना समझें और इसको जो वक्त आप देते हैं इसके ऊपर कभी मलाल ना करें कि हाय मेरा तो इतना टाइम तो कुरान के साथ ही लग जाता है, मेरे तो इतना वक्त तो मेरा इसमें ही चला जाता है, और इसके ऊपर कभी आप अफसोस कर रहे हो या कभी आपको ये हो रहा हो कि ये पता नहीं फालतू ही जा रहा है, देखो लोग तो इतना इतना कमा रहे हैं या वो लोग इतनी मजे कर रहे हैं और मैं तो पता नहीं इसके साथ एक मुशक्कत में पड़ गई हूँ। ये कुरान मुशक्कत के लिए नहीं नाजिल किया गया जैसे सूरह ताहा में अल्लाह ताला ने फरमाया। ये तो इंसान की इस दुनिया को भी संवार देता है और आखिरत को भी। इसकी कदरों मंजिलत हमने जानी नहीं। हाँ चूम के और रखा तो है खूबसूरत गिलाफों में, लेकिन इसकी कदर नहीं हमने जानी, क्योंकि जिस चीज की कदर होती है इंसान उसको जितना भी वक्त दे दे ना कभी उसके ऊपर रोता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन क्या बात है कि अगर हम वक्त दे भी रहे हैं तो उसके बाद भी हमें यही रहता है, हाय इतना वक्त मैंने निकाल दिया कुरान के लिए, मेरा तो इतना टाइम इसी में लग जाता है, मेरा तो आधा दिन इसी में सर्फ हो जाता है। जैसे कि पता नहीं हम कितनी मुशक्कत में पड़ गए, कितनी मुसीबत हमने ऊपर अपने ऊपर ले लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया ये कुरान हर उस चीज से बेहतर है जो लोग दुनिया से समेट रहे हैं, सब चीजों से। तो फिर जितना भी किसी को कुछ भी मिल रहा है ना, जो आपको मिल रहा है वो बेहतरीन है। इस चीज का हमें ईमान होना चाहिए अपने अंदर, इस चीज का यकीन होना चाहिए कि मैं बेस्ट जगह पे अपना वक्त लगा रही हूं, मेरा जो ये वक्त गुजरता है ना ये है बेस्ट। इसके अलावा सारी चीजों में खत्म हो जाना है। मलाउन कहा गया दुनिया को और दुनिया की हर चीज को, लानत ज़दा कहा गया सिवाय जिक्र करने वाले के, या जिक्र जो अल्लाह ताला का करते हैं और जिक्र की बातें अल्लाह ताला की बात, इसके अलावा सारी चीजें जो है वो अल्लाह की रहमत नहीं है उनके ऊपर। ये वो वक्त है जो मुबारक वक्त है, ये वो वक्त है जिसकी हमें कदर करनी चाहिए कि अल्लाह तू शुक्र है कि तूने हमें इस काम के लिए बिठा दिया, और अल्लाह ताला तेरा शुक्र है कि तूने हमें ये मौका दे दिया। इसके ऊपर तो शुक्र से इंसान का दिल भर जाना चाहिए, ना कि इंसान कंप्लेंट करता रहे और इस चीज को समझता रहे कि मैं किधर मैं भी फंस गई हूं, कब ये खत्म होगा तो हमारी जान छूटे, ये नहीं होना चाहिए हमारे अंदर, ये ना कदरी है इसकी। तो इस पे खुश हुआ करें, इस वक्त को एंजॉय किया करें, इसके ऊपर कहीं थक भी जाए तो उसके ऊपर शिकायत ना करें, इसके ऊपर थक भी जाए तो तब भी खुश हूं कि शुक्र है। थकना तो और भी जगह पे था, खाना पकाते वकाते भी हम दावतें करते भी थक जाते हैं, शॉपिंग करके भी थक जाते हैं कहीं और, लेकिन कभी शिकायत नहीं करते। हाँ लेकिन इस मामले में क्यों हमारे लब पे शिकायत आए? शुक्र है थक भी गए तो अल्हम्दुलिल्लाह कि सही जगह पे थके, ऐसी जगह है कि यहाँ ये काम आ जाना है, बाकी सारा वक्त जो इधर उधर गुजरा वो सब बेकार है। तो ये तो किताबे मुबीन है, क्लियर किताब है, बड़ी कदरों मंजिलत वाली किताब है। बल्कि आप सोचें कि हमारे सलफ सालेहीन का क्या कहना था इस कुरान के बारे में, हालांकि उन्होंने तो अपनी जिंदगियां खपा दी बस इस दीन की खिदमत के लिए, लेकिन फिर भी वो क्या कहते हैं, सुफियान सौरी जो हैं ताबेई हैं, कहते हैं काश मैं कुरान पर ही इक्तफा करता और किसी और इल्म में मसरूफ ना होता। हालांकि उनके जो दूसरे अलूम थे वो भी सारे दीन के ही थे, वो कोई साइंस या मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे थे, फिर भी वो कहते हैं जैसे डिफरेंट और उलूम होते हैं इसके मुतालिक से, कई लोग ग्रामर के पीछे पड़ जाते हैं, वो ग्रामर ही बस ग्रामर सारी जिंदगी हो गई उनकी, कुरान की तरफ आए नहीं, ग्रामर ही समझते रहते हैं। ठीक है बहुत अच्छी बात है अगर आप कुरान के लिए
इसको समझने के लिए सीख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुरान को छोड़ के नहीं, अभी तो मैं ग्रामर का कोर्स कर रही हूँ, तभी आप कुरान कब पढ़ेंगे? तो अगर आपको फालतू टाइम मिल जाए आप जरूर पढ़ें, लेकिन वो भी ये फरमाते हैं कि काश मैं कुरान पे ही इक्तफा करता। कई लोग हैं वो औलिया अल्लाह के किस्से लेके बैठे रहते हैं, उनकी कहानियां बस पढ़ रहे हैं, नहीं जी हमारा इससे ईमान बहुत बूस्ट अप होता है, ठीक है वो आप पढ़ लें, लेकिन कुरान को छोड़ के नहीं, और भी जितने उलूम है कुरान को छोड़ के नहीं, चाहे वो दीन के ही हैं। इसी तरह इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, मुझे अपने उन औकात पे अफसोस है जो कुरान के फहम के बगैर मैंने गुजर, इसके फहम के बगैर मेरे गुजरे हैं कि मैं इसके अंदर गौर और फिक्र करता इसकी, और हालांकि ये इमाम इब्ने तैमिया है सोचें, लेकिन वो भी अफसोस उन औकात पे कर रहे हैं जो कुरान के बगैर गुजरे, कि इसकी समझ में गुजार लेता, इन लोगों का तो सारा वक्त ही दीन के लिए गुजरा था। हमें कितना अफसोस होगा आखिरत में जो औकात हमने इस कुरान के फहम के बगैर गुजारे, बेशुमार औकात हैं वो, लेकिन चंद घंटे अगर हम इसके लिए बैठ जाते हैं तो उन हमें उन औकात पे आज अफसोस और वो रहता है कि हाय कितने लंबे हो गए, कितना लंबा हो गया, कितनी देर की क्लास हो गई, उनको अफसोस उन औकात के ऊपर है जो इसके बगैर गुजर। हमें चूंकि कदर नहीं ना, तो इसलिए हमें इन औकात पे अफसोस होता है। इमाम अल हसन अल बसरी कहते हैं कि जो कुरान से जुड़ जाए अल्लाह ताला उसको गनी कर देता है, और जो कुरान को छोड़ दे अल्लाह ताला उसको फकर में मुब्तला कर देता है। किसी के बारे में आता है वो कहते हैं कि मैंने अपनी जिंदगी अपने यानी फिरके को डिफेंड करने में ही गुजार दी, काश मैं उसको कुरान के लिए गुजार देता। यानी आप वो अपने फिरके को डिफेंड करने के लिए, चूंकि फिक्री मसाइल होते हैं उन्हीं के ऊपर ज्यादा तवज्जो करते रहे, कुरान से दूर जो लम्हा गुजरेगा उस पर इंसान हसरत करेगा। तो ये बरकत है, ये तो सरासर बरकत है, और इस बरकत को समेटना हमारी खुशनसीबी है। ज़ुन्नून मिस्री से सवाल किया गया, अल्लाह से मोहब्बत कैसे होती है? तो फरमाया इल्म और कुरान के जरिए, इल्म के जरिए और कुरान के जरिए। अगर हम चाहते हैं ना हमें अल्लाह से मोहब्बत हो जाए, अगर हम चाहते हैं हमारी आखरत संवर जाए, अगर हम चाहते हैं हम आखरत की तैयारी में लग जाए, अगर हम ये समझते हैं कि हमें भूल जाता है, हम फिर इस दुनिया की दौड़ में लग जाते हैं, क्या हो जाता है मुझे, ये अगर आपको अपने से शिकायत रहती है ना, तो कुरान की तरफ आइए। इमाम आमश फरमाते हैं मुझे कुरान के जरिए से बुलंदी मिली, ये कुरान ही है जो बुलंद करता है, और जो इसको छोड़ता है ये उसको पस्त कर देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान या तो तुम्हारे हक में हुज्जत बनेगा या तुम्हारे खिलाफ हुज्जत बनेगा, कयामत के दिन आइदर वो हमारे फेवर में होगा या हमारे अगेंस्ट होगा। अगेंस्ट क्यों होगा? हम तो कुरान पे ईमान रखते हैं, जो इसको छोड़ के जिंदगी गुजारे चाहे जितना मर्जी मुंह से बोलता रहे मेरा तो कुरान पे ईमान है, ये कुरान उसके खिलाफ शिकायत करेगी कि इसने मुझे छोड़े रखा, और जिसने इसको अपनी जिंदगी में शामिल कर लिया कि उसका दिन और रातें कुरान के साथ गुजरते थे, उसके हक में गवाही देगा उससे। क्या वो दिन होगा जब कुरान की गवाही कबूल की जाएगी, सुनी जाएगी, इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू होगी उस दिन, इतनी इसकी कदरों मंजिलत होगी उस दिन। आज तो शायद हमें इतनी लगती ही नहीं ना, किताब ही है ना, जब ये खड़ा होगा और ये बोलेगा तो इसकी सिफारिश सुनी जाएगी, ये वहां पे बड़ी कद्रो मंजिलत वाला होगा और सुन के उसको एक्सेप्ट किया जाएगा इसकी सिफारिश। आप समझें कि कोई बड़ा आदमी, बहुत जिसके पास बड़ा योद्धा है, कोई मुल्क का सदर है, उसके साथ आप दोस्ती करने वाले हो जाएं, और आपको पता है कि इसकी बड़ी से है, मसलन है कि एक बड़े मुल्क का जिसकी दुनिया में धूम मची हो, दुनिया का बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क, आप अमरीका का कह लें, आप सदर आपका दोस्त बन जाए, तो आपको पता है कि भाई इसकी बात सब जगह सुनी जाएगी, कभी आप उससे दोस्ती को तोड़ना या छोड़ना गवारा करेंगे? कभी भी नहीं। कुरान को ऐसे समझें कि कयामत के दिन ये होगा जो बोलने वाला होगा, और इसके साथ जिसने दोस्ती बना ली तो उसकी सिफारिश करने के लिए उस दिन खड़ा हो जाएगा, और ऐसे नहीं कि इसको कहा जाएगा कि तू बैठ जा तेरी बात नहीं सुनी जाएगी, नहीं, अल्लाह ताला इसकी बात सुनेगा क्योंकि ये अल्लाह का कलाम है। उसकी बात सुनी जाएगी। ये ऐसों में से नहीं होगा जो ये कहे कि उस दिन डर के बैठा हो, चुप बैठ जाए। नहीं, ये बोलेगा, झगड़ेगा। ये भी हदीस में आता है, झगड़ेगा उस बंदे के हक में जिसने इसको अपने साथ दुनिया में रखा, इसके साथ वक्त लगाया, ये उसके लिए झगड़ेगा, जन्नत में पहुंचा के छोड़ेगा। और क्या चाहिए हमें, फिर भी हम इसको इतनी तवज्जो ना दे तो वो बड़ी बदनसीबी है फिर हमारी। इसको छोड़ छोड़ के और चीजों में तवज्जो रखें, हमारा कितना टाइम इंटरनेट पे गुजरता है, चाहे वो किसी चीज में भी है, चाहे वो फेसबुक पे है, चाहे वो टिकटॉक पे है, चाहे इंस्टाग्राम पे है, किसी जगह पे भी जिसमें हम खरीदारियां कर रहे हैं या बातें पढ़ रहे हैं या किसी को दोस्त अहबाब से गपशप कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, उस वक्त के वो ही वक्त, या हम गेम्स खेल रहे हैं, उसी वक्त को कहाँ पे तोला जाएगा कयामत के दिन, और इस वक्त को कहाँ तोला जाएगा जो आज आप इस कुरान के साथ लगाने वाले। खुद मुकाबला करके देख लीजिए। इन्ना अनज़लनाहू फी लैलतिन मुबारका, ये इतनी शान और मंजिलत वाला कलाम है कि अल्लाह ताला ने इसके लिए ऐसी रात चुनी जो रात भी बाबरकत बन गई इस कलाम की वजह से। ऐसे नहीं कि वो रात में बरकत थी, मगर इस कलाम को चूंकि उस रात में नाजिल फरमाया गया तो वो रात भी बरकत वाली बन गई। जो फरिश्ता इसको लेकर आया, वो तमाम फरिश्तों का सरदार, जिस नबी पे ये कलाम उतरा, वो तमाम अंबिया के सरदार, जिस रात में उतरा वो बाबरकत, जिस महीने में उतरा वो बाबरकत। आप मुझे बताएं, जो जगह अल्लाह ताला ने इसके लिए मुंतखब की वो जगह बाबरकत हो गई। तो जिस सीने को अल्लाह ताला इसके लिए मुंतखब कर ले, वो सीना कितना बाबरकत हो जाएगा। अल्लाह ताला ने इसको एक ऐसी रात में उतारा जो बड़ी बाबरकत, यानी बाबरकत मतलब क्या, कदरों मंजिलत वाली, खैर वाली। और वो कौन सी रात है और उसमें क्या बरकत है, अब इसको यहां पे बयान नहीं किया गया। लेकिन आप देखें, कुरआने करीम की जो तफसीर है ना, सबसे पहले कुरान से ही की जाती है। एक जगह जिस जिसकी यहाँ पे तफसीर नहीं की गई, आपको उसकी तफसीर कुरआने करीम में ही दूसरी जगह पे मिल जाएगी। इसी वजह से वही तफासीर सबसे बेहतरीन होती है, जिनमें सबसे पहले कुरान की कुरान से तफसीर की जाती है, उसके बाद कुरान की हदीस से तफसीर की जाती है। तो कोई आयत भी आपको उसमें समझ नहीं आ रही कि भाई इसका माना क्या है, तो इसकी दूसरी जगह यकीनन कहीं तफसीर आई है। तो आप बताइए कि आपने कहाँ पे इसको पढ़ा है कि ये कुरान किस रात में नाजिल हुआ। इन्ना अनज़लनाहू फी लैलत मुबारक का यहाँ पे कहा गया, तो आप समझते हैं कि कहीं और इस लैला को बयान किया गया कि वो कौन सी रात है। जी हाँ, सूरह कदर में, इन्ना अनज़लनाहू फी लैलतिल कदर, ठीक है। अब हमने इसको लैलतुल कदर में नाजिल किया, अब लैलतुल कदर कब आती है, हमें कैसे पता चलेगा साल में कौन सी रात है जो लैलतुल कदर है। क्या वो 15 शाबान की रात है, या वो रमजान के आखिरी अशरे की रात है, या वो मुहर्रम में कोई रात है, या कोई सफर में रात है, या कोई जिलहज में रात है। कौन सी रात है जिसमें ये कुरान नाजिल हुआ, तो हमें उसकी भी तफसीर मिल जाती है सूरह बकरा में, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीही अल-क़ुरआन, रमजान का महीना वो है जिसमें यह कुरान नाजिल हुआ। तो कंफ्यूजन दूर हो गई, कुरान ने कुरान से ही तफसीर की कि वो महीना कौन सा है, रमजान का। इसका मतलब लैला तो मुबारका जो है वो रमजान में है। और अब हम हदीस की तरफ जब आते हैं तो तब हमें पता चलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बयान फरमा दिया कि ये रात आप जिसमें के कुरान नाजिल हुआ, ये रमजान के आखिरी अशरे की रात है। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इब्राहिम अलैहि सलाम के सहीफे जो हैं वो रमजान की पहली रात को उतरे, तौरात 6 को, इंजील 14 को, और जबूर 19वीं को, और रमजान की 25वीं रात को ये कुरान उतरा। यानी उस इस हदीस में 25वीं रात फरमाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और ये भी फरमाया कि ये 27वीं या 29वीं हो सकती है जो लैलतुल कदर है। یعنی ایگزیکٹ ڈیفائن نہیں ہے کہ کون سی ایگزیکٹلی رات ہے. اسی لیے علماء کہتے ہیں یہ رات بدلتی رہتی ہے ہر سال میں, لیکن جس سال میں قرآن نازل ہوا ہے وہ 25ویں رات تھی. اب ہمیں اس سے پتہ چلا کہ سبحان اللہ, رمضان کا مہینہ کتنا کوئی مبارک مہینہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام جو کلام ہے وہ اسی مہینے میں نازل فرمائے.